Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Apyayantu mamangani vakpranaschakshuh srotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahmopanishadam maham brahma nirakuryam Mama Brahma Nirakarodha Nirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishad Sudharma Ste Mayi Santu Te Mayi Santu Om Shanti 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 Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagine Yomavad Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namah Om Shanti Shanti, Shanti.
सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं. चार खंडात्मक इस उपनिषद के प्रथम दो खंडों के द्वारा परमात्मा के निर्गुण निराकार पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन हुआ. ब्रह्म निरुपाधिक तथा सोपाधिक भेद से उपनिषदों के द्वारा दो प्रकार से निरूपित हुआ है. तो निरुपाधिक ब्रह्म का ही निर्गुण निराकार इस रूप में भी कथन किया जाता है. इन शब्दों से भी कहा जाता है उसे निरुपाधिक ब्रह्म को. सोपाधिक ब्रह्म के अवान्तर मुख्य रूप से दो भेद हैं. एक सगुण निराकार, दूसरा सगुण साकार. सगुण निराकार है कारण ब्रह्म. निरुपाधिक ब्रह्म जिसे कार्य कारण से अतीत के रूप में अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि से बताया गया. यानी निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन दो खंडों में हो गया. सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन द्वारा वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने के लिए अवशिष्ट दो खंड हैं. उनमें भी सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन विशेष रूप से यहां पर किया जा रहा है. जो सगुण निराकार परमात्मा है वही समस्त जगत को उत्पन्न करके समस्त जगत की स्थिति का भी हेतु है. उसी के संकल्प से समस्त जगत स्थिति काल में स्थित है, और जब तक उस सगुण निराकार ब्रह्म का जगत के स्थिति विषयक संकल्प है तब तक यह जगत स्थित रहता है। और इस स्थिति काल में यदि जगत की यानी ब्रह्म के ही कार्यभूत प्राणियों की दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, जिसे गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत और आसुरी संपत के रूप में वर्णन किया है। उपनिषदों में भी प्राण के उपासना के प्रकरण में प्राण की शुद्धि को बताने के लिए दो प्रकार के देव और असुर ये अंतःकरण की ही एक शास्त्रीय प्रवृत्ति देवता के रूप से कही जाती है। तो अशास्त्रीय जो अंतःकरण तथा इंद्रियों की प्रवृत्ति है उसे असुरों के रूप में कहा गया है। और ये जो प्रवृत्तियां होती हैं इसका मुख्य प्रयोजक होता है स्वभाव, संस्कार, और उस संस्कार का गीता के 16वें अध्याय में शास्त्रीय प्रवृत्ति में प्रवर्तक जो स्वभाव है उसे दैवी संपत्ति के रूप में कहा गया है। और जो जीव के स्वाभाविक प्रवृत्ति में अशास्त्रीय प्रवृत्ति में प्रवर्तक संस्कार है जीव के, वे हैं आसुरी संपत। और आसुरी संपत अर्थात तो अशास्त्रीय अर्थ में प्रवृत्त करने वाला स्वभाव से युक्त जो प्राणी है, शास्त्र अध्ययन होने पर भी धर्म अधर्म का बोध होने पर भी मुख्य रूप से प्रवृत्ति उनकी जैसा संस्कार उस संस्कार के अनुसार होती है। और वो संस्कार इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, प्राणी अपनी अपनी प्रकृति शब्दित प्रवर्तक जो दैवी संस्कार या आसुरी संस्कार हैं उन संस्कारों के अनुसार अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। और वो संस्कार मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, प्रवर्तक बनते हैं, शास्त्र तथा ईश्वर का निग्रह भी कुछ नहीं करता। आवश्यक है उन संस्कारों को और संस्कारों को प्रवृत्त करने में पुष्ट करने वाले जो सहयोगी हैं उनके, अंतकरण की ही वृत्ति विशेष हैं जिन्हें संस्कार, आसुरी संपत और दैवी संपत कहा जा रहा है। अंतकरण स्वयं जड़ है और उस जड़ अंतकरण का परिणाम रूप जो दैवी संपत या आसुरी संपत है संस्कार, वह भी चेतन पुरुष को तब अपने वश करते हैं और अपने विषयों में प्रवृत्त करते हैं जब जीव राग द्वेष से युक्त होता है। राग द्वेष से रहित तो यदि जीव का अंतकरण हो जाए तो जीव फिर अपने जो स्वाभाविक संस्कार है उन संस्कारों को अपना प्रवर्तक न बना करके प्रवर्तक बनाता है शास्त्र को, प्रवर्तक बनाता है ईश्वर को, उसकी शास्त्रानुसारी प्रवृत्ति होगी। कब? फिर वो स्वभाव उसका यानी प्रकृति स्वभाव वासनाएं उसको अपने अधीन नहीं कर पाती, जिस जीव का अंतकरण संसार अंतपादी पदार्थों के राग द्वेषों से रहित है। इसलिए भगवान ने दोनों बातें बताई हैं गीता में। एक तो जीवों का प्रवर्तक संस्कार है, स्वभाव है, और वो स्वभाव जैसा होगा वैसी ही प्रवृत्ति होगी शास्त्र या आचार्य का, गुरु का, ईश्वर का निग्रह कुछ नहीं कर पाता, ये कहा। तो फिर एक अवांतर शंका ये हो जाती है कि यदि सबकी प्रवृत्ति अपने अपने संस्कार के अनुसार ही होनी है, तब तो जिसके अच्छे संस्कार हैं वही कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हो पाएगा, और जिसके बुरे संस्कार हैं उसके कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नहीं की जा पाएगी फिर तो, क्योंकि स्वाभाविक संस्कार है, शास्त्रीय मार्ग में कल्याण मार्ग में प्रवृत्त करने वाले संस्कार नहीं है। तो कहते हैं हाँ, यदि वो प्रयत्न नहीं करेगा अपने संस्कारों को बदलने का और संस्कारों को, बुरे संस्कारों को पुष्ट करने वाले जो हैं उनको निवृत्त करने का यदि प्रयत्न नहीं करेगा, तब तो उसकी कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति हो नहीं पाएगी। ये तो दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म अधर्म को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन धर्म को जान करके भी धर्म करना चाहिए ऐसा बुद्धि में आने पर भी धर्म का अनुष्ठान नहीं कर पा रहा हूं। अधर्म नहीं करना चाहिए ये जानता हूं, लेकिन तब भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे हृदय में बैठा हुआ कोई देव है और वो जैसा मुझे प्रवृत्त करता है वैसा मैं करता हूं। वो देव है वही संस्कार, अधर्म के अत्यधिक संस्कार बुद्धि में है तो वही प्रवृत्त करते हैं, वही स्वभाव है। लेकिन भगवान ने कहा कि उस स्वभाव से मुक्ति पानी हो, स्वभाव के वशीभूत यदि नहीं होना हो तो साधक को साधना करनी चाहिए, और वो साधना है इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तौ हेष्य परिपंथिनो। ये जो स्वभाव है वह आपको प्रवृत्त करता है जिस कार्य में, उस कार्य के फल में पहले आपके अंदर राग उत्पन्न करता है, और जिससे निवृत्त करना चाहता है उसके अंदर, उस जिससे आपको हटा रहा है उसके फल में द्वेष उत्पन्न करके फिर आपकी निवृत्ति कराता है। जिस कार्य के फल में आपके प्रति, आपके अंतकरण में द्वेष है, उस कार्य में प्रवृत्त कोई कराएगा तब भी आप प्रवृत्त नहीं होंगे, और जिसके प्रति राग है वहां से, जिस फल के प्रति राग है उस फल की प्राप्ति के साधन से कोई आपको हटाना चाहेगा तब भी आप हटेंगे नहीं, उस फल की प्राप्ति के साधन में लगे रहेंगे। तो ये जो स्वभाव है जीव का प्रवर्तक वह यही करता है कि जिस कार्य में वो प्रवृत्त करना चाहता है उस कार्य के फल में, जीव के अंतकरण में, अपने प्रवृत्त जीव के अंतकरण में राग उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, और जब राग द्वेष प्रबल हो जाए तो प्रबल राग द्वेष से ग्रस्त अंतकरण वह शास्त्र जिसमें उसको प्रवृत्त करना चाहता है उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, किंतु उसका संस्कार जैसा है, उसका प्रवर्तक स्वभाव जैसा होगा उस स्वभाव के अधीन होकर के फिर प्रवृत्ति करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वभाव को यानी बुरे संस्कारों को यदि आप शिथिल करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तो उसे पुष्ट करने वाला जो संसार अंतःपाती पदार्थों में राग द्वेष है, उसको विचार से शांत करो, हटा दो, राग द्वेष उत्पन्न न होने दो। तो यदि राग द्वेष नहीं होगा तो फिर स्वभाव प्रवर्तक न होकर के फिर वो देखेगा कि हृदय के अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है और परमात्मा की ही प्रेरणा रूप जो शास्त्र है, शास्त्र तो वेद है और वेद भगवान ने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर गए। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, इस मंत्र के अनुसार ब्रह्मा जी को यानी अपने प्रथम पुत्र को उत्पन्न करके और ब्रह्मा जी के भोग के लिए संसार को ब्रह्मांड को उत्पन्न करके ब्रह्मांड के अध्यक्ष पद पे स्थापित कर दिया और ब्रह्मा जी को कहा कि ये मेरी प्रेरणा स्वरूप वेद है, मेरी आज्ञा स्वरूप वेद है, ये संविधान है, इस संविधान के अनुसार ब्रह्मांड का राज्य करो, अपना चलाओ इसको। इसलिए श्रुति स्मृति ममय वाग्य ये एक शास्त्र वचन बताता है कि ईश्वर की ही आज्ञा है यानी प्रेरणा है। कौन? ये श्रुति तथा श्रुति अनुसारी, श्रुति कहते वेद को, वेद तथा वेदानुसारी गीता आदि स्मृतियां, ये भगवान की आज्ञा है यानी प्रेरणा है जीव को। तो ये शास्त्र ईश्वर की प्रेरणा है और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बना लेता है, शास्त्रानुसारी अपनी समझ बना लेता है। कब? जब राग द्वेषादि से रहित चित्त होता है। और जब तक राग द्वेषादि होंगे बुद्धि में, बुद्धि बहिर्मुख होगी, अंतकरण बहिर्मुख होगा, समाधि से संपन्न नहीं होगा, तो वो सर्व प्रवर्तक जो परमात्मा है, उस परमात्मा से परमात्मा के अभिमुख तो नहीं रहेगा अपितु परमात्मा से दूर रहेगा और अपने उस वास्तविक स्वरूप के, परमात्मा स्वरूप के अज्ञान से क्या करेगा? कर्म के अनुसार अर्जित जो शरीर है, जो योनि है, उसी योनि में आत्माभिमान करके अपने आप को तदात्मक ही समझेगा। अनात्मा जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, तदात्मक ही अपने आप को समझ करके वो परमात्मा से अलग हो गया, अपनी ही गलत समझ से। वस्तुतः वेदांत का सिद्धांत है जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव तो ब्रह्मरूप है, अलग है नहीं, तत्त्वमशादि श्रुतियां यही समझा रही है। पूर्व दो खंडों में यही शास्त्र तथा आचार्य के द्वारा बताया गया है कि जीव ब्रह्म रूप है, श्रुति ने भी और आचार्य ने भी यही बताया। लेकिन अज्ञान, मूल अज्ञान तथा मूल अज्ञान का कार्यभूत जो कार्य अविद्या है, हम मनुष्य हैं, हम देवता हैं, हम इंद्र हैं, हम अग्नि हैं, मैं वायु हूं इत्याकारक, ये सब का सब मैं के विषय में भ्रम है, अविद्या है, अध्यास है, आत्मविषयक अध्यास। परमात्मा से अतिरिक्त अपने आप को कुछ भी समझना, जैसे वेष्टि में ये मैं मनुष्य हूं ये समझना भ्रम है, अध्यास है, भ्रांति है, ऐसे मैं हिरण्यगर्भ हूं इत्याकारक अभिमान भी अध्यासी है, इसको भी आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं माना जाता। हिरण्यगर्भ भी तो समष्टि सूक्ष्म कार्य समष्टि सूक्ष्म जो शरीर है वो अनात्मा है। जैसे वेष्टि सूक्ष्म शरीर अनात्मा है, ऐसे समष्टि सूक्ष्म शरीर भी तो अनात्मा है और उस अनात्मा को ही मैं जो मान रहा है तो वह भी भ्रांत ही माना जाएगा। और इस भ्रांति का मैं हिरण्यगर्भ हूं, इस प्रकार की भ्रांति भी दुख का ही हेतु बनती है। जैसे मैं मनुष्य हूं, यह भ्रांति आपको मनुष्य शरीर में होने वाले सुख दुखों से प्रभावित करती है। जिस शरीर में आपने आत्माभिमान कर लिया उस शरीर के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से आप प्रभावित रहते हैं। ऐसे मैं हिरण्यगर्भ हूं, ये अभिमान करने वाला जो है उसके अभिमान का विषयभूत जो शरीर है, हिरण्यगर्भ की उपाधि है, उस उपाधि में होने वाला जो तात्कालिक सुख दुख है उससे वह जरूर प्रभावित रहेगा। इंद्र शरीर में जिसका आत्माभिमान है वह इंद्र शरीर में होने वाले तात्कालिक सुख दुखों से प्रभावित रहेगा। चाहे कोई भी शरीर हो अनात्मा, जिस अनात्मा को आप अपनी अहंता का आलंबन बनाएंगे उस अनात्मा के धर्म सुख दुखों से आप बच नहीं पाएंगे, जरूर प्रभावित होंगे। तो ये जो इंद्रादि शरीर में आत्माभिमान करने वाले हैं तो इंद्रादि शरीर में होने वाला सुख या दुख, हिरण्यगर्भ शरीर में होने वाला जो सुख या दुख है उस सुख दुख से जरूर प्रभावित होगा। बृहदारण्यक श्रुति बताती है कि हिरण्यगर्भ को जब ईश्वर ने उत्पन्न किया उस देखा कि मैं तो अकेला हूं हिरण्यगर्भ ने, और मैं अकेला हूं ऐसा ये बोध हुआ और अज्ञान होने के कारण अकेले में वो डर गया। सो अभिभेत ऐसा होता है, सो यानी ईश्वर की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ, वो डरा, भय हुआ और अकेले में उस हिरण्यगर्भ का मन नहीं लगा। नए वरे में अकेले में डरा और मन नहीं लगा, ये डरना और मन न लगना ये सारा एक प्रकार से दुख ही है ना। ये दुख हिरण्यगर्भ शरीर में भी आत्माभिमान करेंगे तो उस शरीर के सुख दुखों से बच नहीं पाएंगे। और इसलिए संसार में जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं उन सब अनात्म वस्तुओं का मुख्य रूप से जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान हम हैं, शुद्ध स्वरूप। उस शुद्ध स्वरूप को ही एकमात्र मैं के रूप में जो ग्रहण कर रहा है वही संसार के तात्कालिक अनात्म वस्तुगत सुख दुखों से बच सकता है, अन्यथा नहीं। और नहीं तो किसी न किसी अनर्थ को ही प्राप्त होता है। ये आख्यायिका के माध्यम से बताते हुए ये बताया जा रहा है कि एक बार देव योनि में प्रविष्ट जो जीव है उनका अनेक देवताओं का तथा असुरों का संग्राम हुआ, और असुर वे हैं जो असमय में ही ईश्वर के संकल्प से विरुद्ध, ईश्वर का संकल्प है सृष्टि के स्थिति विषयक और उससे विरुद्ध सृष्टि का संवार अनुकूल जो व्यापार कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं, जिनकी प्रवृत्तियां जगत की स्थिति के अनुकूल नहीं अपितु जगत के संहार के अनुकूल प्रवृत्तियां हैं, उन्हें कहा जाता है असुर। और देव हैं जो ईश्वर के संकल्प के अनुरूप प्रवृत्ति करने वाले हैं। जगत के स्थिति काल में ईश्वर का संकल्प है जगत की स्थिति हो, इसलिए देवता भी ईश्वर ने दिया हुआ जो जगत पालन रूपी कार्य है उस जगत पालन रूपी कार्य के अनुकूल प्रवृत्तियां करता है। तो जगत के संरक्षक देवता और जगत का संहार करना चाहते हैं ऐसे असुर, इन दोनों का युद्ध हुआ और युद्ध में ईश्वर ने देखा कि हमारे संकल्प के अनुरूप चेष्टा करने वाले जो देवता हैं उन देवताओं का पक्ष कमजोर हो रहा है और असुर भारी पड़ रहे हैं। तो ईश्वर ही अपने संकल्प से असुरों को कमजोर करते हैं अर्थात असुरों का पराजय करते हैं और देवता पक्ष को विजय दिलाते हैं। प्रथम मंत्र में तृतीय खंड के यही चर्चा हुई कि ब्रह्म ने देवताओं को विजय दिलाई और देवताओं को चाहिए था कि हमारी सामर्थ्य से असुर पराजित नहीं हुए अपितु इस समय ईश्वर का सृष्टि विषयक संकल्प है और अपने उस संकल्प के अनुरूप इस युद्ध में का परिणाम ईश्वर ने ही दिलाया है क्योंकि हम को ईश्वर ने जगत का संरक्षण करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। इसलिए ईश्वर ने अपने संकल्प से इस युद्ध का परिणाम असुरों का पराजय और हमारी विजय ये निकाला है। ऐसा यदि देवता सोचते तब तो देवताओं का यह एक प्रकार से शास्त्र सम्मत विचार था, निश्चय था। लेकिन देवताओं ने क्या किया कि अपने को उनके कर्म के अनुसार उपलब्ध जो शरीर आदि है, इंद्र को इंद्र नामक शरीर, अग्नि का अग्नि नामक शरीर, वायु का वायु नामक शरीर, सब देवताओं ने अपने अपने शरीर में ही आत्माभिमान करके अपने आप को तदात्मक ही समझ करके और ईश्वर को न आत्मा के रूप में जान रहे हैं न सर्व प्रेरक के रूप में उस समय निश्चय रहा। ये भ्रांति उनकी रही कि हम जो इंद्रादि रूप हैं और उन हमारा जो सामर्थ्य है उस हमारी सामर्थ्य से ही हमने ईश्वर को क्या नाम असुरों को जीत लिया है। इस प्रकार का उनको मिथ्याभिमान हुआ। उस मिथ्याभिमान को द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है कि तद ते ऐक्षन्त। तो ते शब्द से लेने हैं जीत हो गई है जिनकी, देवताओं की जीत हो गई है। वे जीता तो युद्ध को ब्रह्मण है, ईश्वर ने, परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर जो भी करते हैं उसमें आत्माभिमान नहीं करते हैं। होता तो सबका सब ईश्वर की ही सत्ता से, लेकिन ईश्वर कभी ये अभिमान नहीं करते कि मैंने किया। और जीव अभिमान कर लेता है ईश्वर की सत्ता से होने वाली जो क्रियाएं हैं, ईश्वर की ही शरीरादि रूप से परिणत हुई जो प्रकृति। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जीव केवल कर्ता क्या है, कर्ता कुछ नहीं है। ईश्वर की सत्ता से ईश्वर की प्रकृति में सारे कार्य होता है जो कुछ भी हो रहा है, और जीव है अभिमान कर लेता है और अभिमान करने मात्र से फंस जाता है, इसी के कारण सुख दुख होता है। नहीं तो गीता कहती है ना कि प्रकृते क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार इमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। प्रकृति ये ईश्वर की शक्ति है, ये जो अव्याकृत त्रिगुणात्मिका प्रकृति जिसे अव्यक्त कहते हैं गीता में, और वो है ईश्वर की अपरा प्रकृति। और वही शरीर इंद्रिय रूप से परिणत होकर के प्रकृति के गुण जो सत्वगुण है ज्ञानेन्द्रिय के रूप से तथा अंतकरण के रूप से परिणत हुआ, रजोगुण कर्मेन्द्रिय तथा प्राण के रूप में परिणत हुआ और तमोगुण स्थूल शरीर के रूप में परिणत हुआ, तो ये गुणों का ही परिणाम होने के कारण है गुण ही शरीर इंद्रिया मन बुद्धि। जैसे सोने के कार्य आभूषणों को आप सोना ही कहते हैं, ऐसे प्रकृति के सत्वादि गुणों का ही परिणाम ये जो अंतकरणादि हैं वे गुणत्रय हैं और उन्हीं के द्वारा अच्छे बुरे सभी के सभी कार्य हो रहे हैं।